सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ श्रद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित सर्वसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुदकेवली गणिदं। ये समय सार कुंदकुंदाचार्य भगवान का, उसके हम 44 नंबर की गाथा के बाद कलश 34वां देख रहे हैं। और उसमें तो ये बताया गया है कि अभी तो तुझे आत्मा का स्वरूप तो बताया गया है, अब व्यर्थ कोलाहल जो कर रहा है तू, यानी इसको जानो उसको जानो उसको जानो, उस व्यर्थ कोलाहल से अब तू बस हो, विराम पाम। अब तुझे अपने आत्मा में ही एकाग्र होना चाहिए और मैं चैतन्य स्वरूप ही आत्मा हूँ ऐसा तू 6 महीने तक अभ्यास करेगा तो तुझे आत्मा की प्राप्ति हुए बिना रहेगी नहीं, ऐसी यहाँ खातरी दे रहे, गारंटी दे रहे। तब वहाँ क्या कहते हैं, देखो कल हमने जो पढ़ा था पृष्ठ क्रमांक 35 पर नीचे से दूसरा जो पैराग्राफ है, वहाँ तो पहले बताया था उसके पहले कि जब तक यह आत्मा वीर्यपूर्वक अपने स्वरूप में एकाग्र नहीं होता है तो उसको आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके उपलक्ष्य से आगे हम बढ़ेंगे। तो आवो उपदेश कठन पड़े, नीचे से 6ठी लाइन है, आवो उपदेश कठन पड़े एटले लोको शुभ करता करता शुद्ध थशे एम खोटा पाटे चढ़ी जाए छे। खोटा पाटे चढ़ी जाए छे एटले खोटा मार्गे चाढ़े चाले छे। ये रेल होती है ना, उसके नीचे जो उसके उसको गुजराती में पाटा कहते हैं, रेल के नीचे जो ये रहते हैं ना रूल, क्या कहते हैं उसको, पटरी पटरी, हाँ पटरी को पाटे कहते हैं गुजराती में, खोटा पाटे, यानी तू गलत रास्ते पे जा रहा है। क्या कहते हैं ये ऐसा उपदेश जो है, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता ही है। देखो देखो हम अपनी बात देखें, अन्य की बात तो छोड़ो, कि आत्मा में लीन हो जाओ, तो भाई लीन होना यानी क्या करना, आत्मा में एकाग्र हो जाओ, लेकिन एकाग्र होना यानी क्या करना, एकमेक हो जाओ, लेकिन एकमेक यानी क्या करना चाहिए, यानी हमें ये जो शब्द जो है उस शब्द का सही अर्थ ख्याल में नहीं आता है। यहाँ तो ऐसा ही है कि तू स्वयं ज्ञान स्वरूप है ऐसा जान और जानते रहे, बस दूसरा कुछ नहीं करने का है तुझे, कि मैं ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ ये रटन रख, और ऐसा ही मेरा स्वरूप है ऐसा जान। बस एक टाइम ऐसा है कि मैं ऐसा ही हूँ ये नक्की हो जाएगा मान्यता में, तो तेरा कार्य हो जाएगा। लेकिन हम तो अलग अलग पद्धति से आत्मा को अनुभवना चाहते हैं, और यहाँ तो अन्य ही बात कह रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं कि आवो उपदेश कठन पड़े एटले लोको खोटा पाटे चढ़ी जाए, शू के शुभ करता करता शुद्ध थशे। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि शुभ करने से बंध होगा और शुद्धता करने से निर्बंध अवस्था होगी। तो बंध अवस्था जिस कारण से प्राप्त होती है उसी कारण से निर्बंध अवस्था कैसी होगी, मुक्तता मोक्ष कैसा प्राप्त होगा, ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए। शुभ ने छोड़ी ने अंदर वस्तुना तलमा जमू ए धर्म प्राप्त करवानी निसरणी छे। निसरणी यानी क्या? सीढ़ी। हाँ देखो यहाँ पर क्या समझा, तुम अलग बता रहे थे। निसरणी यानी सीढ़ी यानी हाँ। देखो पहले में पहले ये समझना कि ऐसा कोई आत्मा है नहीं कि जिसको ऐसा बहुत उंडान डीप है, वो ऐसे एकदम तलिए घुसी जाओ, यानी हम ऊपर ऊपर है वहाँ से नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शब्द प्रयोग है, यानी क्या समझाना चाहते हैं, शुभ ने छोड़ी ने अंदर जमूं, अंदर इटले यहाँ पर जाने वाला कोई अलग है और अंदर में कोई अलग है, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन बात तो यह है कि अन्य सारे विचार छोड़कर अपने स्वरूप में ही उसी में एकाग्र हो जाना, इसी को कहते हैं अंदर तड़िए जमूं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि वो जो सागर जैसा होता है और उसके नीचे जाएगा उसके हाथ में मोती लगते हैं और जो ऊपर ऊपर जो किनारे पे हाथ में लगते हैं उसको रेती आती है, तो ऐसा आत्मा में अंदर उतर जाओ तो तुमको चैतन्य मणि मिल जाएगा, ये तो बताने की बात है। यहाँ तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि हम अन्य बातों का विचार छोड़कर केवल स्वरूप का स्वभाव का ही अवलंबन ले कहो या उसी के विचार में चढ़ जाए और उसी में एकाग्र हो जाए, उसी को यहाँ कहा है शुभ ने छोड़ी ने अंदर जमूं। अभी उसके लिए उन्होंने वस्तु ना तड़मा जमूं ये एडिशनल लगा दिया, स्वामी जी ऐसा भी कहते थे इसलिए वो जोड़ दिया वहां पर। अरे भावार्थ है ना, भावार्थ उसमें है। ये धर्म प्राप्त करवानी निसरणी छे, यानी वो चढ़ने का एक रास्ता है, आत्मा को स्टार्ट प्राप्त करने का वो एक तरीका है। प्रवचन सार में कहूं छे के मोटे आवाज हमें कहिए छे के स्वरूप पोता थी जो प्राप्त थाय, एटले राग थी प्राप्त न थाय, ज्ञान थी जो थाय। भगवान तू छे के नहीं, यानी स्वामी जी हमको पूछ रहे हैं तू छे के नहीं, छे तो छे एनी प्राप्ति न थाय एम केम बने। यानी आपको कहा गया है कि आकाश के फूल को ले आना भाई आप, तो कब प्राप्त होगा, जो है नहीं उसको कैसे प्राप्ति होगी। कि वो जो अभी गुजराती में बोलूंगा मैं, ससला ना सिंगड़ा ने तोड़ी लाओ तू, अरे खरगोश को तो सिंग होते ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे, ख्याल में है ना। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जे छे एनी प्राप्ति न था एम केम बने, એટલે જો વિદ્યમાન વસ્તુ હૈ તો ઉસકી પ્રાપ્તિ હોગી, જો અવિદ્યમાન હી હૈ જો અસત હૈ ઉસકી કૈસી પ્રાપ્તિ હોગી। પણ ભાઈ હું છું એમ અનંત કાળમાં તે કબૂલ્યું નથી, હું છું યાને જીસ સ્વરૂપ મેં મેં હું ઉસ સ્વરૂપ કબૂલ્યું નથી, મેં નહીં હું એસા કોણ માનતા હૈ, લેકિન મેં હું જો હું હૈ વો જૈસા નહીં હૈ ઉસકો હું હૈ એસા માનતા હૈ, ખ્યાલ મેં। तो कह रहे हैं हूँ छू एम अनंत काल में ते कबूलियो नथी, एक समय नी पर्याय अने रागनी स्वीकृति में अनंत काल गयो, पन अंदर चैतन्य घन महाप्रभु जे एक समय नी पर्याय में आवतो नथी अने जे पर्याय में जणाया विना रहतो नथी, ए शुद्धात्मा नी पूर्वे ते कदी कबूलात करी नथी। देखो यहाँ बहुत बढ़िया बात बताई है, यहाँ पर समझाते हैं कि वो चैतन्य घन महाप्रभु जो है वो एक समय नी पर्याय मा आवतो नथी का अर्थ क्या हुआ, कि जो पर्याय है उस पर्याय में वो जो त्रिकाली द्रव्य है वो कभी समाया नहीं जाता, उसमें नहीं आता है। द्रव्य द्रव्य की जगह है, पर्याय पर्याय की जगह है, लेकिन पर्याय जैसा द्रव्य है वैसा जान रही है तो कहेंगे कि पर्याय में द्रव्य आया कहेंगे, लेकिन द्रव्य कभी पर्याय रूप होता नहीं है ये तो हम जानते हैं। क्या कहा देखो, चैतन्य घन महाप्रभु जे एक समय नी पर्याय मा आवतो नथी, अने जे पर्याय मा जणाया विना रहतो नथी, ये क्यों कहा ऐसा प्रतिभा थई? देखो देखो, आत्मा जे चैतन्य घन महाप्रभु छे जे पर्याय मा आव्या विना रहतो नथी, ऐसा जो कहा है वो क्यों कहा है? मम्मी आप जानती हैं? नहीं, हाँ जणाय छे, पण जणाया जणाया वगर रहतो नथी ऐसा कह रहे हैं, तो पुद्गलना पर्याय में जणाय के नहीं? हाँ हाँ बोलो, हमारे क्या नाम है? पिनांग भाई, नहीं ध्यान में आ रहे, बोलो बेटा। हाँ किसमें प्रमेत हो गुण? अभी यहाँ किसकी बात चल रही है? चैतन्य घन महाप्रभु में। हाँ यहाँ देखो आत्मा कैसा है, इन्होंने बताया था लक्ष्मी बेन ने, मैंने कहा चुप करो। हाँ क्या कह रहे? देखो अंदर वस्तु चैतन्य घन महाप्रभु, अभी अपने ये अपने स्वयं के आत्मा की बात कह रहे हैं, एक समय नहीं पर्याय आवतो नथी, यानी वो जो द्रव्य है त्रिकाली द्रव्य है वो पर्याय में नहीं आता है, लेकिन क्या कहते हैं जे पर्याय में जणाय विनो रहतो नथी, वो आता तो नहीं है लेकिन पर्याय में जणाय जाय छे, केम के अरे एनी अंदर प्रमेयत्व नामनो गुण छे, ते कारणे ते कोई ना कोई ज्ञान नो विषय थाय ज। वात ख्याल में आवी बेन? हाँ ए शुद्धात्मानी, ऐसा जो आत्मा है पूर्वे ते कदी कबूलात करी नथी, इस तरह का मेरा स्वभाव है, ऐसा इस जीव ने आज तक जाना ही नहीं, कबूल किया ही नहीं है। बाकी तो तीन बार कबूल 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 करता है। हाँ क्या? हाँ श्री समयसार गाथा 17-18 आवे छे के आग आबाल गोपाल सौने सदा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जणाई रह्यो छे। अभी यहां क्या कह रहे कि कुंद कुंद आचार्य कह रहे कि सबको यानी छोटे से लेके बड़ों तक सबको ये सदा, एक दिन नहीं आधे मिनट में नहीं ऐसा नहीं, सदा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जनाई रहे छे। आहा हा एनी ज्ञाननी पर्याय मां सदा त्रिकाली वस्तु जनाय छे, केम के ज्ञाननी पर्याय नो स्व पर प्रकाशक स्वभाव छे, स्वनु एवु स्व एवु जे द्रव्य तेज तेना ज्ञान मां आवे छे, परंतु अज्ञानी नु वलन स्व द्रव्य उपर नथी, तेथी ज्ञाननी पर्याय मां प्रकट अवस्था में जाननारो पोते जणाय छे एवू तेने भान थतू नथी। याने जैसा आत्मा का स्वभाव है स्वरूप है उस रूप उसको आत्मा जानने में नहीं आ रहा है। वो कोई अज्ञानी होगा वो तो कहेगा हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाई, मैं नहीं जानता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं अभ्यास करता हूँ, मैं का अनुभव तो किसको नहीं होगा, हर एक को है ना। ये किसने किया? मैंने किया। ये क्या हुआ? मैंने किया। जो कुछ है मैं वो तो बेकरी जैसा तो मैं तो बहुत करता ही है, तो मैं किसको अनुभव में नहीं आता है। लेकिन जिस तरह का आत्मा केवली भगवान ने बताया है वैसा उसको नहीं आ रहा है। तो जो कुंद कुंद आचार्य कहते कि ये अनुभूति स्वरूप आत्मा यानी जो अनुभव ने योग्य है अनुभव से युक्त है ऐसा जो आत्मा है वो सब तो जानते हैं, आबाल गोपाल यानी अज्ञानी भी और ज्ञानी भी, छोटे भी और बड़े भी, कोई नहीं बाकी रखा, लेकिन ये अज्ञानी को जैसा उसका स्वरूप है वैसे उस रूप से उसे नहीं जानता है ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखो देखो थर्ड लाइन, स्व एवू जे द्रव्य तेज तेना ज्ञान में आवे छे, परंतु अज्ञानी नु वलन स्व द्रव्य उपर नथी, तेथी ज्ञाननी पर्याय में प्रकट अवस्था में जाननारो पोते जणाय छे एवू तेने भान थतो नथी, एवी तेने प्रतीति उपजती नथी, भगवान તારું જે પૂર્ણ અસ્તિત્વ છે તે એક સમયની પર્યાયમાં સદાય જણાય છે. ભાઈ, આ તો સર્વજ્ઞની વાણી છે, આ તો પરમાગમ છે, આવી વાણી બીજે ક્યાંય છે જ નહીં. જેનો એક એક ન્યાય અંદર સોસરો ઉતરી જાય એવી આ વાણી છે. ક્યાં કહેતે હૈ, સોસરો ઉતરી જાય ને આર પાર, યાને એ ન્યાય એસે હૈ કે અંદર દિલ મેં ઘુસે બિના રહેંગે નહીં, એસા લે લો, દિમાગ મેં ઉતરે બિના રહેંગે નહીં. પર્યાય બુદ્ધિમાં, રાગ બુદ્ધિમાં અજ્ઞાની અટક્યો છે, ત્યાં અટક્યો છે. તેથી જાણનારો પોતે ત્રિકાળી આત્મા એને જણાય છે એમ ખ્યાલમાં આવતું નથી. ક્યાં કહે રહે, પર્યાય બુદ્ધિ મેં અટકા હુઆ હૈ, વો યાને મેં પર્યાય સ્વરૂપ હી હું, યા પર્યાય જીતના હી હું, યા રાગી દ્વેષી હું, એસા હી વો માનતા હૈ ના. યાને મેં કૌન હું તો મેં માતા હું, મેં કૌન હું તો મેં બાલક હું, ઇસ તરહ સે જૈસા મેં પંડિત હું, મેં તો શ્રોતા હું, મેં સમ્યક દ્રષ્ટિ હું, એસા માનતા હૈ. લેકિન વહ ભી પર્યાય બુદ્ધિ હૈ, ખ્યાલ મેં. તો યહાં સમજા રહે હૈ, યે પર્યાય બુદ્ધિ ઓર રાગ બુદ્ધિ, યે દોનો બાતે હૈ, ઇસમે હી અજ્ઞાની અટકા હુઆ હૈ. રાગ બુદ્ધિ કે ભી બહુત ઉદાહરણ હૈ કે મેં ક્રોધી હું, મેં લોભી હું, મેં કામી હું, જો કુછ હૈ વૈસા હી અપને કો માનના. ભાઈ, એસા ભી કહેતે ના કે હમે સમાજ કે હમારે ઉપર ઇતને ઋણ હૈ, તો સમાજ કા કર્જા તો હમે ફિર ઉતારના હી પડેગા. તો યે રાગ બુદ્ધિ હૈ, ખ્યાલ પડ્યા ને. અરે, આવા તત્વનો નિર્ણય કરવાનો લોકોને સમય જ ક્યાં છે? એક દિવસમાં 23 કલાક તો બસ રડવું, કમાવું અને બાયડી છોકરા સાચવવા, રાજી રાખવા અને ઊંઘવું એમ જાય. ક્યાં કહે રે, 23 કલાક ઓર આગે ક્યાં બતાતે, કદાચ એકાદ કલાક મળે તો કુગુરુ વડે તે લૂંટાઈ જાય છે. આહા, એ વેશધારીઓ તે બિચારાને મિથ્યા શાસ્ત્રો દ્વારા યુક્તિ પ્રયુક્તિ બતાવી લૂંટી લે છે. ક્યાં કહે રહે હૈ, વેશધારીઓ. વેશધારીઓ એને એસા નહીં સમજના કે કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકાર કે કપડે પહેને, યે નગ્ન ભી વેશધારી હૈ. પણ વો કૈસા હૈ કે ખોટે રાસ્તે બતાતા હૈ, ખોટા રાસ્તા એને આપ શુભ કરો તો આપકો કલ્યાણ હોગા, આપ યે યહાં કોઈ પર્વત યાને શિખરજી સમજો, યા તુમ્હારા શત્રુંજય સમજો, વહાં જાઓ તો તુમે ધર્મ હોગા, એસા કોઈ કોઈ તીર્થક્ષેત્ર લે જાકે તુમકો ધર્મ હોગા, તુમ ઇતના ઉપવાસ કરો તો તુમે ધર્મ હોગા, તુમ ઇતના અચ્છા દાન દો તો તુમે ઉપવાસ હોગા, ઓર દાન નહીં દોગે તો ન માલુમ કહાં ગિર જાઓગે, માલુમ નહીં પડેગા. એસા ઉપદેશ દેને વાલે તો કહેતે હૈ યે સબ વેશધારી હૈ. હા, તો સમજા રહે હૈ કે યે બિચારા 23 ઘંટે તો ઇધર ઉધર હી કમાતા હૈ, બાય ચાન્સ એકાદ ઘંટા મિલે તબ કહેતા હૈ વહ ભી કુગુરુ ઉસકો લૂટ લેતા હૈ. અબ યે તો કહેને કી બાત હૈ, ઓ વહ જીવ કે હી એસે યોગ્યતા હૈ કે ઉસકે નસીબ મેં એસા ગુરુ મિલા, ખ્યાલ મેં. વો ગુરુ કા કુછ ઉસમે નુકસાન નહીં હૈ, નુકસાન તો વો જો જાયેગા સુનેગા ઉસકા હૈ. અબ હમે તો ઇતની તો અક્કલ હોની ચાહીએ કે સાચા ઉપદેશ દેને વાલા કૌન હૈ, ઓર જો રાગ મેં ચઢાને વાલા કૌન હૈ, યાને કષાયો મેં ચઢાને વાલા કૌન હૈ, ઓર જો વિતરાગતા કો બતાને વાલા ઉસમે ખીચને વાલા કૌન હૈ. યહાં એ ક્યાં કહે રહે, દેખો દેખો, પર્યાય બુદ્ધિમાં, રાગ બુદ્ધિમાં અજ્ઞાની અટક્યો છે, ત્યાં અટક્યો છે. તેથી જાણનારો પોતે, એ જવા દો આગળ, એ આ ગઈ ને, કદાચ એકાદ કલાક મળે તો કુગુરુ એને વડે એ લૂંટાઈ જાય છે, યાને ઉસકા એક ઘંટા ભી બિતા રહે હૈ, વો પકડ જાયેગા. આહા, તે વેશધારીઓ બિચારાને મિથ્યા શાસ્ત્રો દ્વારા યુક્તિ પ્રયુક્તિ બતાવી લૂંટી લે છે. દેખો ભાઈ, યે મિથ્યા શાસ્ત્ર પઢાના એસા કુછ નહીં હૈ, સહી શાસ્ત્રો કે ભી મિથ્યામાં ક્યા ઇન્ટરપ્રિટેશન કરેગા તો ભી વહી હાલત હોને વાલી હૈ. ખ્યાલ મેં શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં 15મા પાના ઉપર લખ્યું છે કે જે શાસ્ત્રોમાં વિતરાગ ભાવનું પ્રયોજન પ્રકટ કર્યું હોય તે જ શાસ્ત્રો વાંચવા સાંભળવા યોગ્ય છે. રાગની મંદતાથી સંસાર ઘટે એમ જેવા કહ્યું હોય તે શાસ્ત્ર નથી, કેમ કે એને તો અતત્વ શ્રદ્ધાન પોષી મોહભાવને પ્રગટ કર્યો છે. આવું શાસ્ત્ર તે શાસ્ત્ર નથી પણ શસ્ત્ર છે. યે એસા મોક્ષ માર્ગ મેં લિખા હો, મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક મેં, યાને યે કોઈ આપ એસા મત સમજના કે અભી કી બાત હૈ, યે તો પહેલે સે હી એસા ચલતે આયા હુઆ હૈ. ઓર અભી ક્યા હૈ, યે હુંડાવો સર્પની કાલ હૈ ના, તો હુંડાવો સર્પની કાલ મેં આજ કી બાત તો છોડો, અરે આદિનાથ ભગવાન સે યે બાતે ચલતે આઈ હૈ. ઓર વહાં તો એસા દિયા તલે અંધેરા થા ભાઈ, કે આદિનાથ ભગવાન કા પૌત્ર યે મારીચી બેટે કા બેટા ઉસને હી એક નહીં દો નહીં 363 પાખંડી મત ઉત્પન્ન કિયે થે. ખ્યાલ મેં, યે હુંડાવ સર્પની કાલ કી એસી વિશેષતા હૈ કહો, ઓર અન્ય યહાં ઇતના બાકી ધર્મો કા ઇતના યે નહીં હોતા હૈ જોર. અભી એસા દેખા જાય તો સ્વર્ગો મેં ભી જૈન ધર્મ કી હી વિશેષતા હૈ, લેકિન ફિર ભી યહાં સે સંસ્કાર લેકે. અભી એક તો બાત ધ્યાન રખના કે એસે ધોકે મેં મત રહેના કે જૈન જીવ હી સ્વર્ગ મેં જાતે હોંગે. અરે જિનકી કશાયો કી મંદતા હૈ એસા મિથ્યા દૃષ્ટિ અન્ય મતી જીવ ભી મોક્ષ મેં જાયેગા, સોરી સ્વર્ગ મેં જાયેગા. ખ્યાલ મેં, ભલે ગ્રેવે તક નહીં જાવે વો વાત છોડો, પણ 16 સ્વર્ગ તક જાયેગા. અબ વહાં વો ક્યા હોતા હૈ ઉસકે અવધિ જ્ઞાન હોતા હૈ, ઓર અવધિ જ્ઞાન કે દ્વારા વહાં પર ભી વહાં વો ક્યા બોલતે હૈ ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન રહેગા. લેકિન વહાં સમજ લો કે કોઈ એસા નીચે કા મતલબ વહાં 10 પ્રકાર કે દેવ હૈ એક જૈસ કે, તો 10 પ્રકાર મેં સબસે જો કનિષ્ઠ હોગા उसके वो भले मिथ्या मतलब खोटी मान्यता वाला होगा, उसको तो जबरन जो ऊपर वाला कहेगा वैसा रहना पड़ता है. वहां तो कोई ऐसा झंडा लगा कि क्या कहते हैं सत्याग्रह करे ऐसा करे कुछ नहीं है. वहां तो जैसा बैठो बोले तो बैठो, खड़े रहो तो खड़े रहो, हाथी बनो तो हाथी बने, और क्या जो कुछ बने हैं वो बनाए. ऐसा है वहां तो मानसिक दुख बहुत है. ખ્યાલ મેં, ઓર હમારે નરક મેં માનસિક ભી હૈ ઓર શારીરિક ભી હૈ. શરીર મેં એક તો બુદ્ધિ હૈ ને, તો ઉસમે ભી હોગી. અભી હમ યહાં પર દેખતે હૈ ને કે હમ માન લીજીએ બાર બાર હમ હમારે બહેન કા હી નામ લેવે, મંદા બહેન કા નામ લેવે, તો સબ બોલેંગે દેખો દેખો ઉસકા બાર બાર નામ લેતા હૈ, હમારા કોઈ નામ નહીં લેતા હૈ. હા, ऐसा मन में ही मन में मानसिक दुख है, वैसा वहां पर भी उसका इतना बहुत बड़ा क्या बोलते वैभव है, वो देख देख के ईर्ष्या होती है देवो देवों में, और उसके सामने बोलने की किसकी हिम्मत नहीं है. ख्याल में है, तो वो यहां ये बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर खोटे शास्त्र चलते हैं, खोटे शास्त्र बताने वाले भी हैं, वैसे वहाँ पर भी जैन धर्म की प्रधानता होने पर भी ऐसे अन्य मती वाले भी वहाँ होंगे, रहते हैं. उनका अवधि ज्ञान होता है तो पहले को याद आता है ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ था करके. जैसे किसी को याद आता है कि अरे इतना बड़ा वैभव मुझे कैसा मिला जन्मते ही, हाँ इतना ऐसा वैभव में कहाँ आया? फिर अवधि ज्ञान चालू हो जाएगा उसका, अरे वहां ऐसे ऐसे गुरु ने मुझे उपदेश दिया और मैंने उनका नहीं सुना, फिर भी मंद भाव किए थे, तब वहां ऐसा पलट कर एकदम उसको सम्यक भी हो सकता है। ये वैभव देख के भी, जैसे यहां नरक में इतनी वेदनाओं देख के इसको उस कारण भी हो सकता है, ऐसा इधर भी है। सब अलग अलग बातें हैं। तो यहां कह रहे हैं कि आओ शास्त्र थे शास्त्र न थी पन शस्त्र छे, कारण के राग द्वेष मोह वड़े जीव अनादि थी दुखी थई रहे छे। ये कोई संयोग की अपेक्षा से नहीं बता रहे, क्या स्वयं के मोह राग द्वेष के कारण, आज की बात नहीं, अनादि थी जीव दुखी थई रहे छे। शुभ राग नी वासना तो तेने वगर सिखवाड़े पन हती। क्या कहा? यही अपना पुराना, ये निगोद में जीव जाएगा तो किस कारण जाएगा साहब? हाँ, कौन से परिणाम के कारण? अशुभ परिणाम के कारण ना, क्या पाप परिणाम, दोनों एक ही है ना। और वहां से बाहर आएगा वो शुभ परिणाम का ना। देखो वही बताते हैं कि शुभ राग्नि वासना तो तेने वगर सिखवाड़े पन हती। तो निगोद से जो अनादि काल से निगोद में थे, नित्य निगोद, वहां से बाहर निकले। अरे शुभ की कौन सी महात्मा है, निगोद भी करता है, ख्याल में है ना। तो कहते हैं अने आ शास्त्र वड़े तेनुज पोषण करियूं त्या भलू थवानी शू शिक्षा अपी। यानी वो कहते कि ये शुभराग करने का तुझे नए सिखाने की कोई गरज ही नहीं है, अनादि से तुझे उसकी टेव है, तू उसी में पला पोसा हुआ है, तो अभी ये शास्त्र पढ़कर उसका पोषण करने में और तूने क्या नई बात सीखी है। आवी बात आखरी लागे पन शू थाय, पोताना वाड़ानो आग्रह होय, वाड़ानो एटले संप्रदायनो आग्रह होय, तेथी दुख थाय पन तेथी शू, जेने हित करवू होय तेने मध्यस्थ थई विचारवू जोईए। मध्यस्थ यानी समता वृत्ति धारण करते हुए श्री पंचास्ती का है गाथा 172 अपन कहूं छे के सर्वशास्त्रों तात्पर्य वितरकता छे। जो दिगंबरों ना बधाए शास्त्रों नी वात मेल खाती अने अविरुद्ध छे। सर्वशास्त्रों में वितरकता नु जो पोषण करियूं छे क्या कह रहे? देखो यहां पंचास्ती काय में लिखा जो है कि जो चार ही अनुयोग के जो शास्त्र है वो सर्व शास्त्रों नो तात्पर्य वितरकता छे। और क्या कहते हैं? दिगंबरों ना बधाए शास्त्रों नी वात, यानी वहां जो कोई सिद्धांत बताए हैं वो सिद्धांत वात मेल खाए छे, मेल खाती यानी वो विरुद्ध कभी नहीं है, एटले अविरुद्ध छे। यानी कोई क्या कहते हैं शास्त्र में एक बात लिखी हो और दूसरे इसमें उससे विरुद्ध बात आई हो, ऐसा कभी नहीं होगा। सर्व शास्त्रों में वितरकता नूज पोषण करियूं छे। सवार में आवियो तो ने के अरहंतो ए मोक्ष ने मोक्ष मार्गनी प्ररूपना करी छे, एवा अरहंतो ने एमनी सर्वज्ञता अने वितरकता ने ओळखीने नमस्कार करूं छूं। जो आ निर्ग्रंथ संतोनी अमृतवाणी आनुनाम परमागम अने शास्त्र आई कहे छे के पोताना स्वरूपनो अभ्यास करे तो तेनी प्राप्ति जरूर थाय। अहीं रागनो अभ्यास करवानु नथी कहूं, रागादि परवस्तु गमे ते पुरुषार्थती पण प्राप्त न थाय। पर वस्तु छे ने पोतानु स्वरूप तो मौजूद छे, आहा विज्ञान घन स्वभाव पने अस्थि धरावती पोतानी चीज प्रत्यक्ष मौजूद छे। विज्ञान घन यानी ज्ञान से परिपूर्ण ऐसा घन स्वरूप ऐसा आत्मा है, विशेष ज्ञान जो है ऐसा जो स्वभाव है, ऐसी इससे जो युक्त है ऐसी जो प्रत्यक्ष अपनी अपना द्रव्य वह तो मौजूद है, हाजरा हजूर है, पण तेने पोते भूली गयो छे, चेती ने एटले जानी ने जो देखे तो पासे छे, केम के ते पोते छे, जुओ तो खरा। श्री जयचंद पंडिते केवो सरस भावार्थ भर्यो छे, कहे छे के अंतरमां जागृत थईने जुए तो ते पोते ज छे, तेनो अभ्यास करता ते प्राप्त थाय ज। अहीं 6 महीनानो अभ्यास कयो तेथी एम न समझवुं के एटलो ज वखत लागे, स्वरूपनी प्राप्ति तो अंतर मुहूर्त मात्रमां थाय छे, परंतु शिष्यने बहु कठिन लागतुं होय तो तेने निषेध कर्यो छे। समझावामां 6 महीनाथी अधिक समय नहीं लागे, समझवामां समझवामां 6 महीनाथी अधिक समय नहीं लागे, तेथी अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल छोड़ी ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मामां लागवाथी जल्दी स्वरूपनी प्राप्ति थशे एवो उपदेश छे।
हाँ। गाथा के ऊपर लिखा है, कथम चिदन्वय प्रतिभासे अपि अध्यवसानादयः पुद्गल स्वभावा इति चेत, उसका अर्थ लिखा है नीचे। हवे शिष्य पूछे छे के आ अध्यवसानादि भावो जीव न कह्या, अन्य चैतन्य स्वभाव जीव कह्यो, तो आ भावो पण चैतन्य साथे संबंध राखनारा प्रतिभासे छे। जीव की जो मिथ्या भ्रांति है वो मिथ्या भ्रांति पुद्गल में तो नहीं देखी जाती, अध्यवसान वगैरह भाव जीव में ही देखे जाते हैं, तो वो क्या प्रतिभासित होते हैं, वो चैतन्य के ही ऐसे प्रतिभासित होता है।
यहाँ पर बता रहे हैं कि आ भावो पण चैतन्य साथे संबंध राखनारा प्रतिभासी जानने में आ रहे हैं, यानी ये समझा रहे कि चैतन्य के सिवाय जड़ में वो ये दिखाई नहीं देते, छता तेमने पुद्गलना स्वभाव केम कया, यानी ऐसा होते हुए भी इनको पुद्गल का क्यों कहा, ऐसा प्रश्न है।
अभी उसके उत्तर में अभी हम गाथा पढ़ेंगे। अठविहं पियकम्मं सौवं पोग्गलमयं जिणा वेन्ति, जस्फलं तं उच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्। अष्टविधमपि च कर्म सर्वं पुद्गलमयं जिणा ब्रुवन्ति, यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य। रे कर्म अष्टप्रकारनु जिन सर्वपुद्गलमय कहे, परिपाक समये जे हनु फल दुःख नाम प्रसिद्ध छे। रे कर्म अष्ट प्रकारनु जिन सर्वपुद्गलमय कहे, परिपाक समये जे हनु फल दुख नाम प्रसिद्ध छे।
गाथात कहते हैं अष्टविधम अपिच, विधय ने प्रकार, आठ प्रकार के कर्म की बात है, यहाँ द्रव्य कर्मों की बात है। आठे प्रकार नु कर्म छे ते सर्वम यने सर्व पुद्गलमयम, पुद्गलमय छे द्रव्य कर्म, पुद्गलमय छे वो पुद्गल पर्याय है। एम जिनाहा जिन भगवान सर्वज्ञ देवो ब्रुवंती यानी कहे छे, क्या कहते हैं, आठ प्रकार का जो कर्म है या आठों प्रकार के कर्म पुद्गलमय है ऐसे जिनेंद्र भगवान ने बताया है। उन्होंने जानकर बताया ना, हमने तो कर्म को नहीं देखा है, परंतु आगम से जाना है। भगवान ने जो बताया है वैसा हमने जाना है, तो वो कैसा है? तो पुद्गलमय है। यस्य विपच्य मानस्य, जे पक्व थई उदय में आवता, विपच्य ने उसका विपाक होने पर, जिसके विपाक होने पर कर्मनु फलम फल तत् दुखम इति उच्यते। कर्मनु फल प्रसिद्ध दुख छे एम कहूं छे। यानी आठ प्रकार का जो कर्म है वो पुद्गलमय है और उसके उदय का फल दुख ही है। किसके उदय का? साता का कि असाता का? दोनों का। सभी आठों ही प्रकार के जो कर्म है उसके उदय का फल दुख है। क्यों दुख है? कर्म का फल तो कर्म में है। हाँ, जीव उसमें एकत्व बुद्धि करता है, यह कर्म का फल मेरा है ऐसा मानता है, ये उसकी मिथ्या भ्रांति है ना। अभी ये टीका में समझाएंगे, आप पढ़ेंगे
क्या? आप पढ़ रहे हैं क्या मुझे? अच्छा, टीका। अध्यवसान आदि समस्त भावों ने उत्पन्न करना रूजे आठे प्रकार नु ज्ञानावरण आदि कर्म छे, ते बधुई उद्गलमय छे। अभी ये क्या कह रहे हैं? ये अध्यवसान आदि भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वो किसके कारण से हो रहे हैं? तो कहते आठ प्रकार के कर्मों से। क्या कहा? देखो देखो, अध्यवसान आदि समस्त भावों ने उत्पन्न करना रूजे आठे प्रकार नु ज्ञानावरण आदि कर्म छे। तो ये बता रहे हैं कि ये आठ प्रकार के कर्म हैं, उनके निमित्त से ही ये अध्यवसान आदि यानी शुभा शुभ भाव वगैरह सब ये उत्पन्न थाई छे। ये बधु पुद्गलमय छे एवं सर्वज्ञनु वचन छे। ये हम नहीं कह रहे, कहते हैं ये तो जिनेन्द्र भगवान की ने बताई हुई बात है। विपाकनी हदे पहुंचेला ते कर्मना फलपने जे कहवामा आवे छे, ते एटले के कर्मफल अनाकृता लक्षण जे सुखनामनो आत्म स्वभाव तेनाती विलक्षण होवाथी दुख छे। अब ये क्या कहते हैं? कर्मना फल जे छे ते केवा छे? ते दुखमय छे के दुख छे। ये कैसा कह रहे? देखो, विपाकनी हदेला हदे पहुंचेला, यानी जो अभी फल देने योग्य हो गए हैं, विपाक यानी वो उदय में आने वो योग्य है ऐसे फल देने वाले, ते कर्मना फलपने जे केवामा आवे छे, ते ऐसे जे कर्म है वो अनाकृता लक्षण जे सुख नामनो आत्म स्वभाव तेनाती विलक्षण हुआ थी, यानी आत्मा का स्वभाव कैसा है? अनाकूल स्वभाव है, लेकिन ये कर्म का उदय कैसा है? उससे विरुद्ध स्वभाव वाला है, यानी वह दुख स्वरूप है, दुख है। ते दुख माज आकुलता लक्षण अध्यवसाय आदि भावो समावेश पामे छे, तेथी जो के ते वो चैतन्य साथे संबंध होवानो भ्रम उपजावे छे, तो पन ते वो आत्माना स्वभावो नथी पन पुद्गल स्वभावो छे। यानी वह जो अध्यवसान आदि जो भाव है वह पुद्गल के निमित्त से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए कहते हैं वो दुखम है। ते दुखमा जाना कुर्ता, ये अध्यवसान आदि जो भाव है ना वे भी दुख स्वरूपी है, और वो कर्म का फल है वह भी दुख स्वरूपी है। ये दोनों भावों का उसमें समावेश है ऐसा कह रहे हैं। और वो ऐसा क्या कह रहे हैं? देखो देखो, ते दुख माज अनाकृता लक्षण अध्यवसान आदि भावो समावेश पामे छे। वो जो कर्म का फल जो दुखमय है उसके कारण से ये अध्यवसान आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उससे भी दुख ही होता है। तेथी जो के ते वो चैतन्य साथे संबंध हुआ ना ब्रह्म उपजावे छे, यानी ऐसा लगता है कि चैतन्य का ही परिणाम है। लेकिन ये जो शुभाशुभ भाव जो है वह चैतन्य स्वभाव में नहीं है, तो पण तेवो आत्माना स्वभाव नथी पण पुद्गल स्वभाव छे, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अभी ये जो हमने पहले पढ़ा था वही बात आगे बताएंगे, कौन सी के वो ये जो राग द्वेष के परिणाम है कहो या अध्यवसान आदि जो भाव है, जैसा स्वरूप है उसे विपरीत प्रकार के भाव होने के कारण जो विकार स्वभाव रूप परिणमता है, ऐसे जो राग द्वेष के परिणाम इन ये अध्यवसान आदि भाव में उन्होंने इंक्लूड किया है, ये कर्म के कारण से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो कर्म के यानी पुद्गल के ही है ऐसा कहने में आता है। यही बात आगे बताएंगे। कर्मनो उदय आवे त्यारे आ आत्मा दुखरूप परिणमे छे, अने दुखरूप भाव छे ते अध्यवसान छे, तेथी दुखरूप भावमा तेथी दुखरूप भावमा अध्यवसानमा चेतनतानो भ्रम उपजे छे। क्या कह रहे हैं, कर्मनो उदय आवे त्यारे आ आत्मा दुखरूप परिणमे छे, अने दुखरूप भाव छे ते अध्यवसान भाव छे, तेथी दुखरूप भावमा एटले अध्यवसानमा चेतनतानो भ्रम उपजे छे। परमार्थे दुखरूप भाव चेतन नथी कर्मजन्य छे तेथी जड़ छे। अभी वही बात उन्होंने भावार्थ में बताई है। अभी समय सार गाथा 45 ऊपर नु मथाड़ू। हवे शिष्य पूछे छे क्या देवसान आदि भावो जीव न कहया, यानी उनको जीव के नहीं कहे हैं, अन्य चैतन्य स्वरूप जीव कहो, यानी जो जीव है वह चैतन्य स्वरूप है, तो आ भावो पण चैतन्य साथे संबंध राखनारा प्रतिभासे छे। राग द्वेष आदि भावो जड़ साथे संबंध राखता नथी, आत्मा साथे संबंध राखे छे, ऐसा शिष्य का कहना है। चैतन्य सिवाय जड़ मां शरीर आदि मां तो राग दिखातो नथी, छता तेमने पुद्गलना स्वभाव केम कया। प्रश्ननु रूप समझायू, कहे छे के आ राग द्वेष पुण्य पापना भाव अने सुख दुखनु भोगवू ए तो चैतन्यनी पर्याय मां थाय छे, कई शरीरादि जड़मा थता नथी, ए चैतन्यनी ऊंधाई थी थाय छे, तेथी ते चैतन्य साथे संबंध राखनारा प्रतिभासे छे। छता तेमने पुद्गलना स्वभाव केम कया, आवी जेने अंदरथी समझवानी जिज्ञासा छे अने प्रश्न पूछे छे तेने उत्तर रूपे गाथा सूत्र कहे छे। अध्यवसान आदि समस्त भावोने उत्पन्न करनारू जे आठे प्रकारनू ज्ञानावरणादि कर्म छे ते बधुई पुद्गलमय छे एवं सर्वज्ञनू वचन छे। शू कयूं, आ अध्यवसान आदि भावो एटले पुण्यपापना भावो, दयादान व्रत तप भक्ति आदि शुभ भावो अने काम क्रोधादि अशुभ भावो ने उत्पन्न करनारु कर्म छे। व्यवहारत्न तेनो जे भाव छे ते शुभ राग छे। ए शुभ राग पोतानो माने ते जीव मिथ्या दृष्टि छे। क्या कह रहे, देखो ये जो अध्यवसान आदि भाव है ना, वह मेरे है चेतन के है ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्यों, तो ए शुभ राग थी लाभ थाय एटले धर्म थाय ए वात ज क्या रही। आई कहे छे के जे शुभ भाव छे ते निमित्त रूप कर्मना लक्ष्य थाय छे अने ए कर्म पुद्गलमय छे एम सर्वज्ञनु वचन छे। गाथामां पाठ छे ने के जीणा बेनती, भगवान सर्वज्ञ देवनु आ वचन छे के व्रत अव्रतना शुभाशुभ भावो हरक्षोकना भावो वगैरे सगड़ा भावोने उत्पन्न करनारू कर्म छे अने ते कर्म पुद्गल में जड़ छे, ते भावोने उत्पन्न करे एवो जीवनो द्रव्य स्वभाव नथी। यानी क्या कहना चाहते हैं, यह जो चारित्र गुण की जो विभाव पर्याय है वह जीव का स्वभाव नहीं है। बस इतनी बात हमारे ध्यान में रहेगी तो आगे जो बात बताना चाहते हैं वह ख्याल में आएगी। द्रव्य स्वभाव नति का अर्थ क्या हुआ कि त्रिकाली जो द्रव्य है उसमें राग द्वेष रूप उसका स्वभाव नहीं है। अगर राग द्वेष उसका स्वभाव माना जाए यानी विभाव परिणाम को ही स्वभाव माना जाए तो अगर स्वभाव बनेगा तो राग द्वेष से रहित ये जीव हो ही नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ते भावों ने उत्पन्न करे वो जीवनो द्रव्य स्वभाव नहीं। जो केवी सरस वात लीधी छे भाई परनी दया तो तू पाड़ी शकतो नहीं पन परनी दया पाड़वानी एटले छ कायना जीवोनी रक्षा करवानी जे वृत्ति उठे एने उत्पन्न करनारू कर्म छे अने ते उद्गण में छे ते आत्म स्वभाव नहीं। आ गई ना बात, अब क्लियर शब्दों में लिखा है चैतन्य स्वभाव नहीं। आहा बहु सूक्ष्म बात, वीतराग जैन दर्शन बहु सूक्ष्म छे, लोगों ने समझ में न आवे तेथी विरोध करे पण शुं थाय। हवे कहे छे के विपाकनी हदे पहुंचेला ते कर्मना फळपने जे कहेवामां आवे छे ते दुख छे। कर्मनो विपाक थता जे पुण्य पापना भावो थाय छे ते कर्मना फळपने अनुभवाय छे अने ते दुख छे। अरे लोकोने निश्चय मार्ग एटले सत्य मार्ग छे ते बेसतो नथी अने एक्सेप्ट नहीं होता है। हम मराठी में कहते पटत नहीं, क्या बोलते भाई गुजराती में? अरे गुजराती पटत नहीं होता नहीं है, बेसतू नथी यानी वो मगज में उतरतो नथी। कोने? लोकों ने। अने व्यवहार परंपरा कारण छे एम हट पकड़ी ने बेसी गया छे। पन भाई व्यवहार नो जे शुभ राग छे तेने उत्पन्न करनार तो कर्म उद्गल छे एवं सर्वज्ञ नु वचन छे। एने परंपरा कारण शी रीते कहिए विपाक ने प्राप्त कर्मना फळपने कहेवामां आवेला ते अध्यवसान आदि भावो दुख रूप छे ते परंपरा मोक्षनु एटले सुखनु कारण केम होय? देखो अध्यवसान आदि भाव तो दुख स्वरूप है और मोक्ष सुख स्वरूप है। तो अध्यवसान आदि भावों से यानी शुभाशुभ भावों से या शुभ भावों से जो दुख स्वरूप है उससे सुख स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? स्वामी जी को एक पॉइंट मिलने का अवकाश बराबर ठिकाने पे पहुंचा देते। भगवान आत्मा त्रिकाल अनाकुल आनंद स्वभावी वस्तु छे, अनाकुल सुख आत्मा नो स्वभाव छे, एवो जे सुख नाम नो अतीन्द्रिय अनाकुल आत्म स्वभाव छे तेनाथी पुण्य पापना भाव विलक्षण छे। विलक्षण ना अर्थ शू? विरुद्ध लक्षण वाला छे। विलक्षण लक्षण और उससे विरुद्ध बहुत अच्छी बात है। विलक्षण का अर्थ क्या क्या? विरुद्ध लक्षण वाला। सवारे कहू तू ने के सकरकंद जेम साकर ने मिठास नो पिंड छे तेम भगवान आत्मा ज्ञान थी जोइए तो ज्ञानमय छे अने सुखती जोइए तो सुखमय छे। आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु छे तेमा अनाकुल अतींद्रिय आनंद वसेलो छे तेमा काई पुण्यपापना विकल्प वसेला नथी। ए पुण्यपापना विकल्प चाहे व्यवहार रत्नत्रयना विकल्प हो चैतन्य थी विलक्षण एटले विरुद्ध लक्षण वाला आकुलता लक्षण वाला छे। ये लक्षण वाला जरा गलत छपा हुआ है, आपको मैं क्या है देख लेना। विरुद्ध लक्षण वाला वो लणक्ष वाला हो गया है। चलो हवे कहे छे के ए आकुलता लक्षण अध्यवसान आदि भावो पुण्य पापना भावो दुख माज समावेश पामे छे। इन्होंने अध्यवसान भावों को और पुण्य पाप को भावों को एक ही गिनाया है, क्योंकि विरुद्ध अपने विपरीत मान्यता के साथ, मिथ्या अभिप्राय के साथ जो राग द्वेष के परिणाम है उसको ही अध्यवसान भाव कहा है। आत्मा तो ज्ञान में, श्रद्धा में, शांति में, वितरागता में, अतीन्द्रिय आनंद में छे, आत्मानो जे अनुकूल आनंदमय स्वभाव छे, तेनाती विलक्षण, एटले विरुद्ध लक्षण वाला पुण्य पाप दुख रूप छे, जे भाव दुख रूप छे ते सुखनु साधन केम थाय, ते साधन नथी पन बाधक होवा छता साधन केवामां आवे छे, जेम मोक्ष मार्ग बे प्रकारे नथी, मोक्ष मार्ग नु निरूपण याने कथन बे प्रकारे छे, तेम साधन बे प्रकारे नथी पन तेनु निरूपण बे प्रकारे छे। निश्चय समकित थाय त्यारे साथे जे देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धानो राग होय तेने व्यवहार समकित कहेवाय छे। खरेखर राग छे ते तो चारित्रनो दोष छे। ये क्या कह रहे, देखो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा नो राग, उसको व्यवहार व्यवहार सम्यक दर्शन कहा है, नाम सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन और है चारित्र गुण के विभाव पर ही है। खरेखर राग छे ये तो चारित्रनो दोष छे। देवगुरु शास्त्रनी छ द्रव्यनी के नवतत्वनी जे श्रद्धा छे ये तो विकल्प छे, राग छे, परंतु निश्चय सम्यक दर्शन नो सहचर देखी ने तेने समकित नो आरोप आप्यो छे। शुभ भाव निश्चय थी तो झेर छे, पन निश्चय समकित नो सहचर जानी तेने अमृत नो आरोप करवा आरोप आप्यो छे। वो क्या है, जहर है कहते हैं, लेकिन अभी क्या करे, उसके साथ आया है तो सहचर जानी तेने अमृत नो आरोप आप्यो छे। आई कहे छे के रागादि भावो सघळा अकुलता लक्षण दुःखमां ज समावेश पामे छे, तेथी खरेखर ते अजीव छे। जीव वस्तु तो आनंद स्वभावी छे। क्या कहते हैं, देखो रागादि भाव सघळा आकुलता लक्षण दुःखमां ज समावेश पामे छे, अने जीव वस्तु तो आनंद स्वभावी छे, अने आ पुण्य पाप आदि भावो एनाथी विलक्षण एटले विपरीत स्वभाव वाला दुख स्वरूप छे, झेर रूप छे, आगळ जता तेने विषकुंभ कह्यो छे, ये रह्यो छे हुआ है। आप में क्या है, नए पुस्तक में क है, पुराने पुस्तक में हमेरे में र है, हमारा एकदम असली पुरानी है। श्रीमद में आवे छे ने क्या के निश्चय राखी लक्ष्यमा साधन करवा सोय। साधन एटले आ रागनी मंदता है, साधन रागनी मंदता साधन छेज नहीं, ए रागादिना साधन तो आकृता लक्षण दुखमा समावेश पामे छे, एम आई कहूं छे। श्रीमदे तो निश्चयना लक्ष्ये साधननी वात कही छे, निश्चय साधन करवानी वात कही नथी, निश्चय साधन करवानी वात कही छे। भाई भगवान त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव एम कहे छे के मारी सामे जोता तने राग थशे, ए राग छे ते दुखमां समावेश पामे छे। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु अनाकुल आनंद स्वरूप छे, तेनी अपेक्षाए स्त्री आदि विषय तरफ लक्ष्य जाए के भगवान नी वाणी ऊपर लक्ष्य जाए, ए बन्ने सरखा छे। देखो देखो यहाँ गलत अर्थ मत निकालना हो, कि यहाँ स्त्री के साथ जिनवानी की तुलना की, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं ना जिनवानी की नहीं, भगवान की। ये भगवान आत्मा को देखने से, सॉरी कहाँ गया, भगवान ना वाणी ऊपर, जिनवानी की बात है, हाँ भगवान नी वाणी ऊपर जाए तो शुभ भाव थाय, अने स्त्री तरफ जुए तो अशुभ भाव थाय, ए बन्ने एक ज जातना छे। शू कीधु? ए बन्ने समयसार गाथा 31 मां इंद्रिय कह्या छे, अने इंद्रियोने जीतवानुं कह्युं छे, अर्थात एमांथी खसी जवानुं कह्युं छे, એટલે ભગવાનના આશ્રય રહેવું એમ કહ્યું નથી, ભગવાનના આશ્રય તો શુભરાગ થશે અને તે શુભરાગ દુઃખરૂપ જ છે। અહો આવી હિતની વાત દિગંબર જૈન દર્શન સિવાય અન્યત્ર ક્યાંય નથી। ભગવાન તારો સ્વભાવ તો અનાકુળ આનંદ છે ને, તે છોડીને તને જે રાગનો વિકલ્પ ઉઠે, દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધાનો જે વિકલ્પ ઉઠે, તે આકુળતા લક્ષણ દુઃખરૂપ છે। પદ્મનંદી સ્વામીએ પદ્મનંદી પંચવિંશતિમાં ચિદાનંદ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાંથી બહાર નીકળી જે બુદ્ધિ શાસ્ત્ર ભણવામાં અટકી છે તેને વ્યભિચારની બુદ્ધિ કહી છે। ક્યું કે તેરા જો ઉપયોગ હૈ વહ સ્વમેહી चिटकना चाहिए, चोटवो जो ही है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि अभी तो ऐसी दशा तक पहुंचा हुआ है, अभी तो आत्मा में लीनता करने के सिवाय अन्य कुछ करना ही नहीं चाहिए। यानी वहां तो कितनी मतलब कड़क बात कही है, देखो देखो पद्मनंदी पंचविंशति मां, वहां पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि देखो देखो कि चैतन्य स्वरूप मां थी બહાર નીકળી જે બુદ્ધિ શાસ્ત્ર ભણવામાં અટકી છે કે શાસ્ત્ર લખવામાં અટકી છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, તેને વ્યભિચારની બુદ્ધિ કહી છે। એ એકદમ મતલબ બહોત નિશ્ચય કી બાત એસી હૈ કે યહાં તો આપણે સ્વરૂપમાં એકાગ્ર હોકર લીન કર લીનતા કરના હી યહી એકમેવ કર્તવ્ય હૈ, ઇસ અપેક્ષા સે બાત કહીએ। આહા હા, ગજબ વાત છે ભાઈ। વસ્તુનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ સમજવું પડશે। શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવ ભગવાન પાસે 8 દિવસ રહ્યા હતા ભરત ક્ષેત્રમાંથી, જ્યાં સિમંદર પર મહાત્મા વિરાજે છે ત્યાં વિદેહ ક્ષેત્રમાં ગયા હતા। તે ભગવાનની આ વાણી છે, આ ગાથામાં તે પોતે કહે છે કે આ સર્વજ્ઞનું વચન છે કે શુભ ભાવો પુદગલથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવો છે, જીવ દ્રવ્યથી ઉત્પન્ન થયેલા નથી, પૂતગલના નિમિત્તે ઉત્પન્ન થયેલા છે, માટે તે પૂતગલમય જ છે। ભગવાન આત્મા અનાકુળ આનંદ સ્વરૂપ છે અને પુણ્ય છે એ તેનાથી વિપરીત લક્ષણવાળો ભાવ દુઃખરૂપ છે। અનાકુળ આનંદ સ્વભાવી આત્મામાં એનો સમાવેશ થતો નથી। પર્યાયમાં જે શુભ ભાવ છે, પુણ્યભાવ છે, તે દુઃખ છે। તેથી નિશ્ચયથી, નિશ્ચય નહીંથી, ક્યાં કહા, પર્યાયમાં જે શુભરાગ છે, પુણ્યભાવ છે, તે દુઃખ છે, તેથી નિશ્ચય નહીંથી તેને આત્મસ્વભાવ સાથે સંબંધ નથી। અપેક્ષા એ તથા સ્વભાવનો જે પર્યાયમાં અનુભવ થાય તે નિર્મળ નિર્વિકારી પર્યાય સાથે પણ તે શુભરાગનો સંબંધ નથી। યાને સ્વભાવ મેં ભી નહીં હૈ, और जो पर्याय अपने आत्मा को अनुभव कर रही है उस पर्याय में, पर्याय का भी उस राग द्वेष से कोई संबंध नहीं है, शुभाशुभ भाव से कोई संबंध नहीं है। यानी द्रव्य में भी संबंध नहीं और पर्याय में भी संबंध नहीं, पर वो पर्याय कौन सी ली है कि जो अपने आत्मा का अनुभव कर रही है, ऐसी शुद्ध पर्याय ली है। ચિન્માત્ર વસ્તુનો જે અનાકુળ આનંદ સ્વભાવ તે જેને સાધ્યો છે, તથા તેમાં જ દૃષ્ટિ જ્ઞાન અને રમણતા થતા જેને નિરાકુળ આનંદનો પ્રકટ સ્વાદ આવ્યો છે, તેવા ધર્મી જીવના મંદરાગના ભાવને સહચર દેખી પરંપરા કારણ કહ્યું છે। તેને સ્વભાવ તરફનું જોર કરીને શુભના કાળે અશુભ ભાવ ટાળ્યો છે। ખરેખર તો સ્વભાવના જોરમાં, જોરના કારણે અશુભ ટળ્યો છે, પણ તેને બદલે શુભાશુભ થી અશુભ ટળ્યો, સોરી શુભ ભાવ થી અશુભ ટળ્યો એમ આરોપ કરીને કહ્યું છે। મિથ્યાદૃષ્ટિને સ્વભાવરૂપનું જોર નથી, તેથી તેને અશુભ ટળ્યો જ નથી। તેથી તેને શુભભાવ જે થાય છે તે શુભભાવ ઉપર પરંપરા કારણનો આરોપ આપી શકાતો નથી। સૌથી મોટું મિથ્યાત્વનું પાપ છે, તેનો તેને નાશ કર્યો નથી, તેથી મિથ્યાદૃષ્ટિના બધાય ભાવોને અશુભ કયા છે। અભી આગે કી બાત કલ લેંગે। જાવાની કે જ્ઞાન તે સુજે લોકારો।